आजच्या श्लोक क्रमाने सब्जेक्ट आहे मॅरेज ऑफ सुकन्या अँड चैन मुनी. सुकन्या का चैन मुनी का विवाह का बारे में ये तृतीय स्कंद में बताया वर्णन किया था. दूसरा मनुपुत्र, दूसरा मनुपुत्र का, दूसरा मनु का उन्हें सरोजिशु उसका पुत्र है सरियाती, उनका वंश के बारे में तृतीय अध्याय में वर्णन किया था, वर्णन किया. सुखदेव गोस्वामी यहां कहते हैं सरियाती एक राजा है, ये मनु महाराज का पुत्र है, उसका क्षत्रिय राजा होकर भी ये बहुत कार्यों में बहुत निष्ठ है. वो वेदों में बड़े विद्वान है, वेद पढ़ने में बहुत पारंगत है, क्षेत्रीय कार्यों में उनको इतना रुचि नहीं है. क्षेत्रीय आई मगर क्षेत्रीय कार्य में उतना रुचि नहीं है, यज्ञ करने में दूसरों को दान देने में बहुत इच्छुकता था उसका. सो एक दिन क्या अंगिरसा वंश में द्वितीय दिन में यज्ञ करने के लिए देवज्ञ राजा सरियाती अनुष्ठान का बारे में उसका उपदेश दिया था. सरियाती बहुत दान देने वाला व्यक्ति है, अनेक कथा भी है उनका बारे में भागवतम, इसमें महाभारत में भी बहुत कथा है, अभी हम लोगों उसका बारे में चर्चा करेंगे नहीं. उनका कन्या के बारे में, सुकन्या के बारे में ये वर्णन किया है उसका अध्याय में, उसका बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे. सरियाती राजा, उसका कन्या के नाम है सुकन्या थी. सुख का अर्थ है सुंदर है, परम सुंदर थी. यहां सुखदेव गोस्वामी इधर वर्णन किया था सुकन्या का नेत्र कमल लोचन, कमल का पंखुड़ी का जैसा है उनका नेत्र, उतना पंखुड़ी का जैसा समान है उसका नेत्र, इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहां कहा है उसका सुकन्या बहुत सुंदर थी, अति सुंदर है. एक बार महाराज सरियाती सेनका के साथ में उसका पत्नी, उसका पत्नी उसका पुत्री कन्या को लेके वन में गया था. वन में गया, वन में भ्रमण करके करके चमन मुनि आश्रम में गए थे. चमन मुनि आश्रम में जाने के बाद उन लोगों को सबको एक विचित्र घटना देखा है. सुकन्या उनका सखी के साथ में था, उनसे कहा है यहां वन में अनेक वृक्ष है, वृक्षों के सुंदर देखते, वृक्षों का सुंदर अति मधुर है, उधर वृक्षों का बारे में फूल फल सब रहते वृक्षों में, ये सुगंध परिमल सुगंध देखे उनको बहुत आनंद चकित हो गया उसका. उसका देखे देखे चल के चल के एक प्रदेश में आया था, वो प्रदेश में क्या एक वाल्मीकि रंध्र है, उसमें ये रंध्र में बहुत ज्योति प्रकाशित होता था उसका, बहुत ज्योति प्रकाशित होता उसमें. ये रंध्र कैसा बनाया उसका, चिमटी एक घर बनाया था उसका, इतना घर बनाने के बाद उसका चैन मुनि वहां ये तपस्या करता, घोर तपस्या करता था भगवंत को प्राप्त करने के लिए, ऐसा घोर तपस्या करते थे, करके करके उसका वन में चैन मुनि बहुत जान से तपस्या करते, करते करके उसका शरीर पूरा मट्टी से जमा हो गया, पूरा वहां तक पूरा मट्टी से जमा हो गया, मट्टी वो मट्टी दोनों के नेत्र के ऊपर तक आ गया, खाली नेत्र ओनली बाहर दिखता था हमको, बहुत प्रकाशित था उसका ये नेत्र में. सुकन्या को मालूम नहीं था, उसने सोचा कोई अंदर के रत्न है हीरा है के, इसलिए बहुत प्रकाशित होता उसमें. वो देखे सुकन्या को आश्चर्य लगा, ये ज्योति क्यों हो, इतना पावरफुल ज्योति था उसका, बाहर क्यों हो था इसमें. उसका उसका साथ में भी है सुकन्या का साथ में उनका, उनको भी बताया ये चमक रहा उसका ज्योति, ये क्या है आपको कुछ मालूम है क्या. वो तो बोला हमको तो कुछ मालूम नहीं, ये क्या ज्योति बाहर से आती है उसका. उन लोगों को सोचा कोई हीरा है कोई मणि है उसके लिए चमकते, ऐसा सोचा था उधर. सो पूर्व काल में मुनि लोग ऐसा तपस्या करते थे उसको मालूम ही नहीं पड़ता था उसका, क्यों ऐसा तपस्या करता था उसका, पीने का भी नहीं है खाने का भी नहीं, उतना तपस्या ध्यान भगवान के ऊपर, इतना ध्यान पवित्र ध्यान ये करते था तपस्या के बारे में. से वो ये रंध्र में वाल्मीकि रंध्र से चमक रखता था, उन लोगों को मालूम नहीं था, इसलिए ये चेक करने के लिए सुकन्या क्या किया, सो थोड़ा छोटा काटी को लेके उसको अंदर प्रवेश किया था। उसका प्रवेश करने के बाद वो काटी उसका आंखों में फंस गया था। उसका फंसने के बाद क्या हो गया, उसका बहुत खून बाहर निकला था। खून बाहर निकलने के बाद उसको शरियाती राजा को इतना आश्चर्य हो गया। दूसरा कारण भी क्या है, एक खून निकलने के बाद कुछ अपराध किया ऐसा लगा उनको, लेकिन उसको क्या होता है, संयम को उसके साथ में कोई था, उनको मलमूत्र बंद हो गया था, मलमूत्र भी सब बंद हो गया था उसका। इसलिए शरियाती राजा को बहुत भीभीत लगा था उसको, क्या है अगर ऐसा छोटा कारण से ऐसा हो गया और दूसरा कुछ अगर गलत काम किया तो, चवन मुनि के आश्रम में कुछ गलत काम किया तो और भी कुछ ये अपने को साप मिलेंगे, ऐसा उनको मन पे लगा था। इसलिए क्या किया, उसका सब मिलके चवन मुनि का आश्रम में गए था, उसमें जाके चवन मुनि को प्रार्थना किया, चवन मुनि को प्रार्थना किया। उसका पहले एक्चुअली शरियाती विचार था उसका, ये घटना क्यों हो गया, अपराध क्यों हो गया, किसका कारण से हो गया, हर एक व्यक्ति को पूछता था ये राजा शरियाती, हर एक व्यक्ति को पूछता था क्यों ये ऐसा घटना हो गया, कौन इसका कारण कौन है। सो हर एक व्यक्ति बोलते थे सैन्य में, हर एक व्यक्ति पूछता था बताई तो मेरे को कुछ कारण नहीं है, मेरे को तो मालूम नहीं क्यों ऐसा घटना हो गया। थोड़ा देर के बाद उसका बेटी सुकन्या डर डर के आके उसको भीतर लगे उसके पिताजी से बात करने के लिए नजदीक आके, सो मेरा वजह से ये ऐसा घटना हो गया, मेरे को क्षमा करो बोल के पिताजी को माफ करने को आज्ञा दिया था उसमें। सो पिताजी बोला ठीक है, अगर कोई ऐसा कार्य किए तो सो बताए तो अच्छा रहता, दूसरा टाइम में आपको ये ठीक तरीके से हम लोगों को कुछ सिद्धिकरण कर सकते उसको, अगर कोई नहीं बताए तो मुश्किल हो जाएंगे उसको। चौन मुनि के पास जाके उसमें सब लोगों जाके चौन मुनि के पास जाके चौन मुनि को प्रार्थना किया, ये अनजाने से मेरे बेटे के कारण से हो गया, उसको मालूम नहीं था, ये रंध्र में एक जीव है बोल के उसको मालूम नहीं, कोई वस्तु है बोल के उसको जाके काटे से उसको निकालने के लिए, वस्तु को निकालने के लिए प्रयत्न किया था, उसका कारण से ये काटे उसका आंखों में, चौन मुनि का आंखों में, दो आंखों में ये फंस गया था उसका, वही उसका स्टोरी एक्चुअली उसका स्टोरी। बाद में ये आने के बाद उसको चौन मुनि उसका बात किया था, चौन मुनि बाहर आके बात किया था उनको, शरियाती मुनि को बोला, क्या शरियाती मुनि को बोला आपका साथ में कौन है, तुम्हारा कन्या है, तुम्हारा पति है क्या, तो शरियाती राजा पूछा था मेरा साथ में कन्या है, मेरा पति है, मेरा सैन्य भी है। सो चौन मुनि पूछा था उसका कन्या का वयस कितना है, आपका एज कितना है, कन्या का एज कितना है, सो उसके शादी हो गया क्या, दो प्रश्न पूछा, दो प्रश्न से क्या हो गया शरियाती मुनि को, शरियाती राजा को मालूम पड़ा ये किसके लिए पूछ रहा था, उसका उसका अभिलाषा क्या है, उसका मन पे हो गया, उसका उनको शादी करने की इच्छा है, दो मुनि भी है तो भी शादी करने की इच्छा है, शादी करने का ही तो उसका जवान होना ना, थोड़ा अच्छा होना, जवान होना, उनका तो शरीर कैसा है, पूरा शरीर ढीला हो गया, पूरा खाली नरु दिखता था बाहर, खाली पूरा बाल भी पूरा इतना पंडरा बाल है, मेरा से भी ज्यादा पंडरा बाल है उसका, ऐसा बाल है उसका। सो इसका देख के कन्या को शादी करने का बोले तो शरियाती राजा को मन पे कुछ शंका हो गया था, अरे ऐसा वृद्ध व्यक्ति को मेरा बेटे को क्या देने का, सो दूसरा कारण तो नहीं है, क्यों उसका ऑलरेडी ये शाप मिला उनको, दूसरा डर लग गया, और भी कुछ अगर नहीं लिए तो शाप लगेंगे, दूसरा भी कुछ हमको शाप दे देंगे, मलमूत्र तो बंद हो गया और कुछ दूसरा और भी इंद्रियों को कुछ बंद किया तो प्रॉब्लम हो जाएंगे, इसके लिए डर के क्या किया वो, ठीक है उसको अभिलाषा को उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूछा, मेरा बेटे को आपको देखिए विवाह करेंगे, अच्छा डौरी गौरे बहुत दिया, अच्छा तरह से शादी कर लिया, शादी करके शरियाती राजा उनका चले गया, उनका थोड़ा समय के बाद अपना अश्विनी कुमार स्वर्गलोक से, दो अश्विनी कुमार, वो अश्विनी कुमार ये आयुर्वेद का डॉक्टर से, आयुर्वेद का डॉक्टर से चौन मुनि का आश्रम में आया था, चौन मुनि उस अश्विनी देवता लोगों को अश्विनी कुमार को दोनों को मालूम था ये चौन मुनि के बारे में क्या हो गया, इसलिए उन लोगों चौन मुनि के आश्रम में विजिट किया था, विजिट करने के बाद चौन मुनि उनका मर्यादा से सब अच्छा दिया, बैठने के लिए जगह दिया, सब पूरा मर्यादा से दिया, पूछा बाद में, सो देवता लोग को नमस्कार किया. नमस्कार करने के बाद उसको इच्छा बाहर कैसा बोलेंगे, सोच सोच के बता रहे उसका, मैं वृद्ध है, मेरे को जवान करने के लिए तुम ऐसा आशा दे दो, जवान करने के लिए मेरे को जवान करो. सो बाद में ये दोनों अश्विनी कुमार लोग दोनों जटाबूटी से आयुर्वेद डॉक्टर्स है ना, इसलिए कुछ इन लोगों थोड़ा दवा बनाया, उसको दवा बन के ये पाउडर बनाया, पाउडर बना के उसको उसको बताया. सो चौरमणि को ये लेके, ये दवा लेके एक सरस में नदी में जाओ, नदी में जाके उसको मिला के उसको तुम डुबाओ उसमें अंदर, तुम डुब के आ जाओ. सो चौवनमिनि तो कहीं जाएंगे, चौवनमिनि तो इतना बुढ़ा है, वृद्धा पे वो चलने को नहीं आता, पूरा शरीर ढेला है, क्या चला से तो चलने को नहीं आता, उसकी शक्ति नहीं है. वो उनको देखा, ये दोनों देखा उसको, पकड़ा उनको, अरे बुढ़ा तुमको शादी करने गए तो तुम क्या करना पड़ता उसको. सो तुम उसको हाथ पकड़ के, सो दोनों हाथ पकड़ा, ये नदी में लेके गया उसको, नदी में लेके उसको डुबा दे, तीनों डुबाए उसको नदी में. सो डुबा के बाहर आ गया, बाहर आने के बाद इतना वृद्ध शरीर कैसा हो गया, चमक रहा उसका, ऐसा शरीर आ गया उसको, यंग जवान हो गया उसको, 16 वर्ष का 17 वर्ष जवान हो गया उसको बाहर आने के बाद. सो बाहर आ गया, बाद में सुकन्या आ गया, सुकन्या देखा ये तीनों में मेरा आश्चर्यचकित हो गया, वो तीनों को देख के उसमें मेरा पति कौन है, मेरा पति कौन है, बहुत दुखित हो गया था उसमें, मेरे पति तो बुढ़ा है ऐसा जवान कैसे हो गया उसमें, बहुत दुखित हो गया. देन दोनों को अश्विनी कुमार लोग देवता लोगों को दोनों को पूछा था, मेरे को बताइए उसमें. बताने के बाद उसका विनंती किए मर्यादा के लिए, लेके उसको उसका पातिव्रत को देख के उसको चमन मुनि उसको सुकन्या को उसको ये पति तुम्हारा पति है ऐसा बताया, उसको लेके गया. उसको ये बताने के बाद दोनों उसका अश्विनी कुमार लोग विमान में स्वर्गलोक में फिर वापस चले गया. ये यहाँ तक बैकग्राउंड है इसका स्टोरी. नौ अभी क्या है, अभी श्लोक के बारे में अब वर्णन है, श्लोक के बारे में वर्णन के बारे में आज बात करेंगे. अभी वो मेरा प्रिय पुत्री, तुम्हारा बुद्धि क्यों ऐसा पतन हो गया, तुम निर्लज्ज भय कैसा प्रेमी और जारुक के साथ में रहते हैं, तुम्हारा पितृवंश और पतिवंश को नरक में जाना पड़ा तुम्हारा कारण से. परपट श्रील प्रभुपाद द्वारा वेद संस्कृति का अनुसार स्त्री एक विवाह होने के बाद पति जीवित स्थाना दूसरा विवाह और प्रेमी के साथ में रखना पितृवंश को और पतिवंश को पतन का कारण, ये तो स्पष्ट है. ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वंश में आज तक ये विषय में बारे में वेद संस्कृति अनुसार ठीक तरह से पालन करते, केवल शूद्र वंश में ये पतन हो गया था. सो पहले पति के सामने दूसरा पति को और प्रेमी को प्रेमी स्वीकार करना एक गलत है उसमें, नहीं तो डाइवर्स इच्छा मांगना ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य कुलों में जन्म लिया स्त्री उसको बहुत गर्व कारण है उसमें. जो चवन मुनि का शरीर ऐसा परिवर्तन हो गया बोल के उसका पहले एक्चुअली दूसरा था चवन मुनि, वो उसका बाद में ये शरियात राजा उनके चले गया, बाद में आ गया ये शादी होने के बाद जो चवन का चवन मुनि उसका बेटी सुकन्या दोनों एक गार्डन में गया था उसमें, उसको शरिया के उधर वो भी वन में आ गया था, वन में आने के बाद वो दोनों को देखा, देखने के बाद उनको आश्चर्यचकित हो गया उसको, अरे मेरा बेटी का शादी हो गया था वो वृद्धा प्या वो व्यक्ति से शादी हो गया, ऐसा जवान दिख रहा उसका साथ में, ये क्या है, उसको उसको आश्चर्यचकित हो गया उसका. एक्चुअली ये बेटी नहीं बताया उनका, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया चवन मुनि का, ये देवता लोग से अश्विनी कुमार लोग का बाद में आने के बाद उसका शरीर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वृद्धाप से गया यवन हो गया, उसका मालूम नहीं था, इसलिए उसका सुकन्या के बारे में व्यवहार के बारे में बहुत उसका ये आश्चर्यचकित हो गया उसका. इसका यही एक्चुअली ये श्लोक में मेनली उद्देश्य क्या है. सो पतिव्रता का कारण क्या है, पतिव्रता का नियम पालन कौन करने वाला है, उसका बारे में ये सुकन्या तो ठीक तरह से पतिव्रता का पालन किया था, क्यों ये वृद्ध व्यक्ति से भी इतना साल संसार कर दिया। अभी पतिव्रता का लक्षण का बारे में अभी हम लोग थोड़ा चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे अभी। सो अनेक प्रकार का पतिव्रता का बारे में एग्जाम्पल है, थोड़ा मेरा बारे में भी थोड़ा बात करेंगे, एक में एग्जाम्पल देने वाला है उसका। महाभारत में भी द्रौपदी, अनसूया, सुलोचना, देन मंदार, देन सीता देवी और गांधारी, सती सावित्री, ये सब पूरा पतिव्रता का लक्षण है, उनका क्वालिटी है उनका बारे में। सो हम लोगों एक दो स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे, उसका पतिव्रता का लक्षण कैसा होना, कैसा गृहस्थ जीवन डालना पड़ता है, उसका बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे उसका। महासती अनसूया, महासती अनसूई के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। पतिव्रता स्त्री है वो, उसका गुण कैसा है, उसका विवाह होने के बाद अत्रि महर्षि से विवाह हो गया, विवाह होने के बाद उसको पतिव्रता का कैसा पालन किया, उसका बारे में क्या हो गया, उसका बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे उसको। अत्रि महर्षि के अनसूय तो विवाह हो गया था, विवाह होने के बाद पति को ठीक तरह से अच्छा तरह से बहुत सेवा किया, अनेक प्रकार का सेवा किया उसको। सो वो सेवा से क्या होता, बहुत संतुष्ट हो गया उसको, अत्रि महर्षि बहुत संतुष्ट हो गया उसको बहुत, उसका अनेक प्रकार का सेवा किए, सेवा करने के बाद उनको संतुष्ट हो गया, उसको पतिव्रता का नाम दिया था उसको, तुम बहुत पतिव्रता है, क्यों तुम बहुत अच्छा तरह से सेवा किया मेरे को, इसका कारण से मैं तुमको ये पतिव्रता का नाम देते तुमको। एक समय में क्या हो गया उसका, एक दिन त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उसका उनका अत्रि महर्षि घर पे आने का विचार था। सो महर्षि को बताया, तीनों आपका घर में अतिथि के रूम में हम आने वाला है, हम प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमारी इच्छा है, हम तीनों आपका घर में आएंगे। सो अत्रि महर्षि उसका अनसूय से बात करके क्या बोला उसका, त्रिमूर्ति लोग हम अपना घर में आने वाला है प्रसाद लेने के लिए, क्या आपका विचार क्या है। वो बोला ठीक है, बुलाइए उसमें। सो तीनों घर पे आए था, तीनों त्रिमूर्ति घर पे आया, आके प्रसाद के लिए उसका अत्रि महर्षि उनको प्रार्थना किया, आप बैठिए हम प्रसाद आपको दे देंगे। सो एक शर्त था उसमें, शर्त क्या किया त्रिमूर्ति लोगों, उसका अत्रि महर्षि को सुकन्या को एक शर्त लगाया, शर्त क्या है उसमें, जब अगर प्रसाद करने के पहले प्रसाद करने का व्यक्ति, प्रसाद हम देने का व्यक्ति, वो नियम होना उसका, नियम है निष्ठा पालन करना पड़ता, पतिव्रता का निष्ठा पालन करना, पतिव्रता का अगर निष्ठा पालन नहीं किया वो व्यक्ति से हम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता हम, ऐसा बोल के त्रिमूर्ति सो उनको महर्षि को बताया। महर्षि ठीक है, सो हमारा पति पत्नी से बात करके फिर वापस आएंगे आपको बताएंगे। सो बात किया, बात करने के बाद दोनों आए था उसमें आके, सो अंगीकार हो गया उसका, अंगीकार होके प्रसाद के लिए बुलाया, बुलाने के बाद उसको तीनों को ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों को बुलाया, त्रिमूर्ति को बुला के बैठाया, बैठाने के बाद सो अनसूया आया, अनसूया आके प्रसाद देने का समय हो गया उसका। वो क्या किया उसका, तीनों को एक आचमन का पात्र लेके थोड़ा पानी लेके उसको मंत्र उपदेश से ये तीनों को बाल बना दिया, छोटा बच्चे बना दिया तीनों को, तीनों को बच्चा बना दिया। बच्चा बनाने के बाद उसके क्या है मंत्र से क्या होता, उसको भूख जो कुछ होता है उसको प्रसाद ग्रहण करने के लिए, वो प्रसाद ग्रहण करने के लिए भूख कम हो गया उसका, भूख नहीं था उसको। बाद में क्या किया उसको, त्रिमूर्ति लोगों का पत्नी लोग आ गया, तीनों आके पूछा था, ये महर्षि का आश्रय में आ गया, सो अनसुई का उससे पूछा था, मेरा तीनों का पत्नी पति किधर है, हम बताइए ये छोटा बच्चे कौन है, ये ऐसा कौन कैसा हो गया उसका। जब अत्रि महर्षि बताया उसको सुकन्या का सॉरी अनसुईया का पतिव्रता का बारे में हम आ गए था, वो कैसा पतिव्रता, वो टेस्ट करने के लिए हम आ गया, परीक्षा लेने के लिए हम आ गया। सो अनसुया ने हमको प्रसाद देके हमको छोटा बच्चा बनाया. फिर हम इसका तीनों पति लोग पूछा था, हमारा पत्नी लोग पूछा था, हमारा पति लोग को वापस दे दो, हम कौन है, किसका पति है, हमको कैसा मालूम नहीं पड़ा. जब उसका अत्रे महर्षि अनसुया बताया उनको ये तीनों, फिर वापस उनको आचमन पात्र लेके पानी से किया, उसको चलन करके उसको पहले फिर त्रिमूर्ति बड़े बनाया. उसको बनने के बाद तीनों में क्या किया, उसको ये आपका पत्नी है, आपका पति है, यही आपका पति है, यही आपका पति है, तीनों को उसको ये पति को स्वीकार करो बोल के बताया. उसका मतलब क्या है, इसको सारांश क्या रहता, उसका पतिव्रता का लक्षण कैसा है. स्त्री जो कुछ भी पतिव्रता का लक्षण बोलते, पति के अनुसार जो कुछ कार्य करना उसका संबंध करना क्या, उसका पालन करना पड़ता, ठीक तरह से पालन करना पड़ता. अगर पति ये लंगड़ा है, नहीं तो उसको वृद्ध है, नहीं तो कुछ बात भी नहीं कर सकता, उसको डम्मी भी है, फिर भी पति एक शादी होने के बाद उसको स्वीकार करना पड़ता उसको. ये वैदिक संस्कृति के अनुसार एक पति पत्नी दूसरा पति को स्वीकार नहीं कर सकता उसका, वैदिक संस्कृति के अनुसार. पहले बताया मैं उसका वैदिक संस्कृति क्या बताता है, ये वृद्ध भी अगर है उसका, अगर उससे संसार ठीक तरह से करना पड़ता. जब अगर पति को अगर तृप्त किया, पति को अगर तृप्त किया तो क्या हो सकता है, उसको संसार आगे बढ़ेंगे, उसको शांति भी मिलेंगे, गृह में शांति मिल सकता है, उसमें ठीक तरह से शांति मिल सकता है. शांति मिलने के बाद आपको घर में जो कुछ प्रॉब्लम है सब पूरा सॉल्व भी हो सकता है उसमें. आजकल देखते हैं हम लोग, हम बहुत देखते हैं एक्चुअली ये पतिव्रता का लक्षण, मैं किधर भी बहुत कमी था एक्चुअली. मैं देखा तो गृहस्थ धर्म में भी, गृहस्थ बाल में, मेरा भी अभी कम से कम 40 वर्ष में गृहस्थाश्रम में है. गृहस्थाश्रम में अगर कैसा स्त्री कैसा होना, उसका पति के साथ में कैसा होना, अगर मेरा बारे में मैं थोड़ा एग्जाम्पल देने वाला है, इसका पहले भी और एक एग्जाम्पल देता हूँ. उसमें मैं डोनेशन हॉल में बैठा था ये जन्माष्टमी कलेक्शन के लिए, एक पति पत्नी दोनों आए था मेरे पास आए कि प्रभु जी आप इधर डोनेशन ले सकते क्या. हाँ माता जी मैं डोनेशन ले सकता. वो दोनों कैसा है, दोनों उसके हैंडीकैप है, दोनों हैंडीकैप है, पत्नी भी हैंडीकैप है, पति भी हैंडीकैप है. पति उसका स्टिक लेके, उसका नेचर की स्टिक लेके आता, मेरे को बहुत ये आ गया उसका, इतना उत्सुक था भगवान के बारे में सेवा करने के लिए. सो बाद में पत्नी भी बहुत सपोर्ट करे, पति को बोला कितना डोनेशन देते तुम, वो पर्स निकाल के कुछ डोनेशन दे रहा था. पत्नी बोला उसका ज्यादा दो डोनेशन, भगवान को देने के लिए ज्यादा दो. उसका दोनों को प्रेम देखो, देने का व्यवहार प्रेम, भगवान को सेवा करने के लिए, भगवान को तृप्त करने के लिए कुछ लक्ष्मी दे दो उनके सेवा के बारे में. वे दोनों को देखा, मैं बैठाया उनको, दोनों को बैठा के बहुत अच्छा तरह से बात किया, 10-15 मिनट बात करने, प्रसाद भी दिया उनको. देने के बाद बताया मेरे को आप कैसा जीवन कैसा करते आप दोनों, आपको तो पति तो ऐसा है, ऑफिस में कैसा काम करते हैं, आप भी कैसा काम, चलने को नहीं आता आपको, कैसा काम कर सकते. सो भगवान की इच्छा है, भगवान हमको सब मदद करते हैं उसका. सो उसका भाव कैसा है, देखो भाव कैसा है, उसका भाव से होता है दोनों का, पति पत्नी का भाव एक एक संबंध आदान प्रदान करके जीवन करते हैं उसमें. ऐसा पति जीवन होना, पति के बारे में स्त्री को मालूम आना, स्त्री के कर्तव्य में पति को भी मालूम आना, अगर मालूम है दोनों का आदान प्रदान अगर हो तो अच्छा तरह से आपको जीवन कर सकते हैं उसमें. सो मेरा बारे में बता सकते मैं थोड़ा एग्जाम्पल, मेरा विवाह हो के कम से कम 1970 में हो गया मेरा विवाह, उसका मतलब कितना हो गया, उसका 30+50 ईयर्स हो गया है ना. विवाह होने के बाद मेरा कुछ गृहस्थ के बारे में क्या करने का मेरे को कुछ मालूम नहीं है, बिल्कुल मालूम नहीं मेरे को. सो थोड़ा मेरे को मेरा पिताजी तो मेरा ग्रैंडफादर उन लोगों मेरे को बताया क्या करने का, संस्कार क्या है एक्चुअली, संस्कार के बारे में कैसा रखने का. पत्नी को आप हमेशा मदद देना पड़ता, उनका साथ में रहने का हमेशा. शादी होने के बाद जनरली कह रहा था उसका तुरंत हम लेके आते, उसके घर में लेके आते, उसका वातावरण अलग वातावरण नहीं थे, उसका पिताजी के घर से अलग वातावरण है सब, उसको बहुत मुश्किल रहता उसको संसार करने के लिए. सो पति क्या करना पड़ता, पति उसको समझ के ठीक तरह से अच्छा तरह से बोलना पड़ता उसको. बोलने के बाद कहते पत्नी को कैसा लगेंगे हृदय में, ठीक है हमको जो रक्षण है, कुछ प्रॉब्लम नहीं, मेरे पति के कारण से मेरे को अच्छा तरह से रक्षण हो सकता, उसको धैर्य होता हृदय में. जब अगर धैर्य नहीं है हृदय में, पत्नी को कहते डर लगता था, नया घर पे आ गया हम कैसा करेंगे, कैसा जीवन करेंगे, अभी तो शादी हो गया 40-50 साल होना पड़ता, कैसा करेंगे, ऐसा लगता उसको मन पे. सो मेनली उद्देश्य क्या है, पति का लक्षण कैसा रखना पड़ता है, हमेशा स्त्री का इच्छा क्या है वो मालूम करना पहले। स्त्री का इच्छा क्या है, खाली किचन में काम करने का, हमेशा 10 घंटा 8 घंटा काम करने का, दूसरा काम कुछ ऐसा नहीं है। पति को उसको हमेशा उसको सपोर्ट देना पड़ता, कुछ कार्य में सपोर्ट करना पड़ता, करके उसको भी उत्साह प्रेरित करना पड़ता। जब अगर उत्साह प्रेरित किया, क्या हो सकता है उसको मन पे, हाँ मेरा पति मेरे साथ में है, कुछ प्रॉब्लम नहीं मेरे को, ऐसा उसका भाव होना उसको मतलब। नहीं तो क्या है, पति सब कुछ कभी बात नहीं कर सकता, अरे पत्नी से भी कभी बात नहीं करता, दोनों झगड़ा हो जाता। आजकल क्या मैं देखता था उसका, बहुत लोगों का शादी होने के बाद, शादी तो होता, शादी पहले होने के बाद क्या होता, चंद्रमुखी होता, बाद में सूर्यमुखी, बाद में ज्वालामुखी हो जाता पति, ऐसा होता है उसमें। पहले ऐसा सोचते चंद्रमुखी सूर्यमुखी ज्वालामुखी हो जाता, बाद में क्या रहता उसको, डाइवर्स। ऐसा नहीं होने का, सुकन्या का ऐसा ये अपना ये श्लोक में बताया, सुकन्या ऐसा वृद्ध व्यक्ति तो भी छोड़ा नहीं उसको, उसका परिवर्तन होने के बाद भी जब मालूम पड़ा उसको मेरा पति है बोल, फिर भी अंगीकार किया, ऐसा नहीं है पति तो अच्छा तरह से वैदिक संस्कृति के अनुसार शादी किया, शादी करके उसको जीवन करो बोल के अच्छा तरह से बताया, कभी निर्लक्ष्य किया नहीं उसके। सो ऐसा व्यक्ति आजकल देखना बहुत मुश्किल है उसका, फिर भी हमारा भक्तों भी बहुत स्टोरी है, बहुत कथा भी है भक्तों के बारे में, क्यों बोलना भी अच्छा ठीक नहीं रहता, क्यों नाम भी नहीं बता सकते मैं, फिर भी इन जनरल मैं बता सकता हूँ उसमें। अगर भक्तों में क्या रहता, हमेशा शादी करने के लिए हमेशा इस्कान का तरफ क्या रहता, हमेशा ये भक्ति का बेटी को शादी करेंगे, प्रभु जी भी ऐसे भक्ति मान इस्कान में होना, वो भी बहुत वो तो बहुत अच्छा है उसका, दोनों अच्छा तरह से संस्कार भी अच्छा होंगे। अगर पति अगर बिगड़ गया, सब पति के साथ में सपोर्ट नहीं दिया, ये बहुत मुश्किल हो सकता है उसका। मैंने एक प्रकार का देखा, 2-3 फैमिलीज को देखा, शादी हो गया, शादी होने के बाद ये उसका थोड़ा समय के बाद उसका घर में कुछ प्रॉब्लम चालू होता। प्रॉब्लम किससे चालू होता उसको, एक्चुअली पत्नी से चालू नहीं होता, पति से भी चालू नहीं होता, पति का पिताजी रहता माँ रहता उससे भी कभी प्रॉब्लम होता, पत्नी को भी ऐसे रहता कभी कभी प्रॉब्लम चालू होता। इसलिए क्या करना पड़ता है उसको, ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको क्या, पति से बात करके ठीक तरीके से उसको व्यवहार के बारे में बात करके उसको पत्नी से कैसा डील करने का, पत्नी को कैसा जवाब देने का उसको मालूम होना। मेनली उद्देश्य गए बड़े लोगों के पास थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, ये प्रॉब्लम को हमको क्या ठीक तरीके से समझ के उनको बता के ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता। अगर ऐसा नहीं है क्या होता उसका, ये डाइवर्स का ये सिचुएशन हो सकता है, डाइवर्स का सिचुएशन हो सकता है उसमें। सो इसमें भी सुकन्या भी ऐसा सोचा था, प्रेमी के साथ में दूसरा ऑलरेडी मैरिज हो गया, उसका पति था, उसका पति के सामने दूसरा पति को स्वीकार करे तो वो पति को कैसा लगता, उसको पति को कैसा लगता, ठीक नहीं ना उसका, उसके लिए क्या था वो कोलंक नष्ट भ्रष्ट करते उसमें। ऐसा कोई भी अगर शादी किया, स्त्री अगर शादी हो गया, शादी होने के बाद कोलम भ्रष्ट नहीं करने का। सो ठीक तरह से वैदिक संस्कृति के अनुसार ये ठीक तरह से पालन करना पड़ता, संस्कृति के रूल्स रेगुलेशंस क्या है उसका मालूम करके उसको ठीक तरह से संसार जीवन करना पड़ता उसमें। और भी एक 2-3 उदाहरण भी मेरा सोचा था 2-3 बात करने के लिए। सो अभी इस्कान में जनरली क्या रहता, मैं तो कम से कम इस्कान का भक्तों के शादी बहुत देखा था, उसका मैरिज वीडियो भी है अपने इस्कान का, हमेशा मैरिज वीडियो में एक मीटिंग में मैं गया था उसमें, उन लोगों का क्वेश्चन पूछा था उसके शादी करने के पहले, उनका लड़की का लड़का का साथ में दोनों का पेरेंट्स भी आते, पेरेंट्स भी आने के बाद डिस्कस करते, उसमें डिस्कस करने के बाद पहले लड़के पूछता था उसका लड़का का क्वालिफिकेशन क्या है, लड़का क्वालिफिकेशन क्या है, क्या पढ़ा है लड़का, पढ़ा बीए पढ़ा नहीं तो डिप्लोमा पढ़ा, वो ऐसे बताते। सो लड़की क्या पढ़ा वो भी पूछते ना, तुम क्या पढ़ा, बोलते मैं बीटेक करने एमटेक पढ़ा, आ गया प्रॉब्लम उधर, आ गया प्रॉब्लम उधर, क्या प्रॉब्लम है उधर, अरे मैं बीटेक है एमटेक है, तुम जो डिप्लोमा क्या है, तो शादी कैसे करने का, तुम शादी करने के लिए आए क्या तुम, फिर पहले सोच के आना पड़ता पहले। इसलिए शादी करने के संस्कार करने के पहले क्या करता, पेरेंट्स से चर्चा करना पड़ता, चर्चा करके अगर वो सूटेबल हो गए तो शादी में ये डिस्कस करने के आना पड़ता। हमारे टाइम पे शादी करने के टाइम पे हम कभी भी ऐसा पूछा भी नहीं, मेरा क्वालिफिकेशन ऐसा है, मेरा पत्नी का क्वालिफिकेशन कैसा है भाई, कभी पूछा नहीं मैं, केवल ओनली पेरेंट्स जो कुछ बताए वो शादी करो बोलते शादी किया बस ऐसे शादी किया मैं, मेरा संसार ठीक तरह से अच्छा चला 50 साल आप देखता होगा ना मेरा माता जी का कैसा रहता आप देखता होगा ना, मैं कभी किससे भी घर में झगड़ा नहीं हो गया मेरे को 50 साल में, कभी भी मेरा ज्यादा मेरे से ज्यादा मेरा पत्नी बहुत सपोर्ट देता था मेरे को, कुछ भी कार्य करने के लिए बहुत सपोर्ट देता मेरे को, और मंदिर में आने का मैं कभी कभी पीछे जाता कभी कभी आने के लिए, फिर मेरा पत्नी तो आगे एक स्टेप आगे रहता उसको, एक स्टेप अगर आगे रहा ना भगवान भी आपको 10 स्टेप आगे रखने को सपोर्ट देते हैं, आपको उत्साह देते हैं उसमें, ऐसा मैं ज्यादा भक्ति में बहुत आ गया उसमें। ये संसार कैसा होना, संतोष होना, हमेशा संतोष होना। अगर बेटी लोगों को भी अगर बच्चा हो गया बच्चा को भी कैसा संस्कार देना, ये हमारा कर्तव्य है, माता पिता का कर्तव्य है। अगर माता का पिता का कर्तव्य नहीं है बच्चे संस्कार नहीं तो बच्चा दूसरा रास्ता पे जाएंगे उसमें। इसलिए आजकल क्या कहता है ये कलयुग में तो बहुत मुश्किल है ऐसा संस्कार बताना, बताने के बाद भी वो सुनना क्या बताते हैं इसका माँ पिताजी क्या बताए उसका संस्कार कैसा पालन करना ये भी ठीक तरह से होना उसका। अगर नहीं है अगर उसका कुटुंब में उसका फैमिली में शांति बिल्कुल नहीं रह सकता। सुदबाह प्रभु उनका लेक्चर में 3 दिन का पहले बारे में बहुत अच्छा बताया, अनेक उदाहरण दिया तो बहुत अनेक उदाहरण दिया, इसलिए मैं अनेक उदाहरण देने के लिए नहीं, मेरा एक्सपीरियंस मेरा बारे में कुछ बताने के लिए मैं थोड़ा तैयार किया था थोड़ा। इसलिए ये गृहस्थ का जीवन बहुत कठिन है एक्चुअली। हर एक आदमी सोचते हैं गृहस्थ का क्या है, पैसा लाते मजा करते इंद्र तृप्ति करते ठीक है, ऐसा नहीं है। इंद्र तृप्ति करने का श्री हर एक जीव का व्यक्ति क्या है, भगवान ऐसा निर्णय किया था, नेचर ऐसा है, श्री इंद्र तृप्ति तो है, इनको मालूम आना कहां तक इंद्र तृप्ति करने का, क्या करने का इंद्र तृप्ति का, क्या ऐसा उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है उसको मालूम होना उसको। और जब अगर ऐसा मालूम नहीं है उनका उद्देश्य का, अगर मालूम नहीं है उनको संसार करने का बहुत मुश्किल रह सकता उसमें। और मैं बहुत फैमिलीज को देखा था उसमें, मेरा साथ में मेरे काउंसिल आए, मेरे काउंसिल में कम से कम मेरा एज का ग्रुप है 4 लोग है, 4 फैमिलीज का मैं देखा, उनका संसार भी बहुत अच्छा तरह से ठीक तरह से चलता। क्यों ऐसा चलता ठीक तरह से, वो खुद बोल रहा था प्रभु जी आपका मीटिंग पे आने के बाद हमको संस्कार के बारे में पहले लेक्चर में बताया, मेरा मिसेज बताया मैं बताया पहले लेक्चर क्या है, पहले लेक्चर में वही संस्कार के बारे में मैं बताया उसका। शादी होकर कितना साल हो गया, 20 साल हो गया, 20 साल में क्या किया हम लोगों, क्या करने का क्या है, आगे क्या करने का, भक्ति कितना गया, भक्ति करने का फायदा क्या है उसका बारे में थोड़ा चर्चा किया। वो फैमिली से भी बहुत अच्छा था, कुटुंब संसार भी बहुत अच्छा है, उनका बच्चे भी बहुत अच्छा क्वालिफाइड लोग हो गया, बहुत अच्छा नौकरी भी है उन लोगों। इसलिए क्या करने का उसमें शादी करने के पहले ये सब पूरा डिटेल पूछना पड़ता, नहीं तो उधर आने के बाद क्या है तो व्यवहार का क्या है, खाली तुम्हारा क्वालिफिकेशन उतना है, तुम्हारा पगार कितना है, तुम्हारा पगार 20,000, मेरा पगार अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी लड़के लोगों पास होता सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्टार्टिंग इटसेल्फ इज 60,000, अभी लड़का को कितना रहता है 30,000, 30,000 में शादी क्या करेंगे। कभी कभी कोई पूछता था उसको, अरे 2 BHK है क्या, 3 BHK है क्या आपका, शादी करने के पहले पूछता 2 BHK है क्या, 3 BHK है क्या, अरे 2 BHK है क्या तुमको, एक क्या चाहिए तुमको, पति चाहिए पहले, 2 BHK किसके लिए, तुमको रहने के लिए बस उतना चाहिए ना। सो पेरेंट्स रहता उसका साथ में रहने का, बाकी का टाइम तो तुम 10 घंटा तो ऑफिस में रहते हो, तुम कहाँ रहते हो ऑफिस में रहते, काली आके 4 घंटा 5 घंटा सोने के लिए, तुम 3 BHK कह के लिए उसको तुमको ये ऐसा है हमारा उद्देश्य आजकल कलयुग में ऐसा है। इसलिए क्या करने का, गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा तरह से ठीक तरह से चलना बोले तो हमको समझ के चलना पड़ता है उसको, वेद के संस्कृति अनुसार रूल्स फॉलो करना, संस्कृति से रूल्स अच्छा तरह से फॉलो किए तो हमको हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएंगे, हमारा फैमिली में भी शांति आएंगे, उसको शांति से क्या रहता है उसको अच्छा तरह से संस्कार ठीक तरह से हो जाएंगे, आपका बच्चे भी क्या होते संस्कार में अच्छा पढ़ के आपका भक्ति में आगे बढ़ेंगे उन लोगों, यही उद्देश्य एक्चुअली पतिव्रता का लक्षण का है। पतिव्रतम बोले तो पति को मर्यादा देना, जब पति को अगर मर्यादा दिया नहीं है तुम्हारा उद्देश्य अलग है, पति एक बताते हैं अगर तुम एक बताते तुम तो संसार कभी भी ठीक तरह से नहीं हो सकता, ये उद्देश्य मेन उद्देश्य। अब ब्रह्मचारी की तो लाइफ बहुत अच्छा है, ब्रह्मचारी की तो लाइफ बहुत अच्छा है, मैं देखता सारा होंगे ना बहुत साल से देखता हूँ ब्रह्मचारी का, कीर्तन करो डांस करो फेस्ट करो बस एंजॉय करो बस उतना से बस। सो गृहस्थ का ऐसा नहीं है, गृहस्थ का सब पूरा कमाना पड़ता, कमाना पड़ता, सो बाकी का साथ में सबका साथ में रखना पड़ता. सो प्रीचिंग का इतना ज्यादा नहीं, प्रीचिंग का कभी है तो थोड़ा कर सकते, प्रीचिंग ब्रह्मचारी का जैसा नहीं है. इसलिए गृहस्थ का जीवन बहुत अच्छा था, वो भी घर में रह के भक्ति भी कर सकते, उसका संस्कार के अनुसार पालना भी कर सकते, रूल्स फॉलो कर सकते. इसलिए प्रभुपाद जी हमारे को रूल चार नियम किया था. इसलिए नियम क्यों किया, नियम अगर जब एक नियम अगर ठीक तरह से पालन किए तो क्या रहता हमको, अपना ये भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ये सपोर्ट मिल जाता हमको. इसके लिए मेन कारण उद्देश्य का ये है. ये श्लोक में भी ये संक्षिप्त में क्या रहता, गृहस्थ का जीवन कैसा रहता, उसमें वो वृद्धाप्य अगर हो गए तो भी सुकन्या तो उसको अंगीकार किया, शादी करके भी अंगीकार, नहीं तो कोई भी अगर ऐसा शरीर को देखे तो कोई शादी भी नहीं करेंगे. वह चवन मुनि को अगर सद्यात मुनि अगर ये शादी करने के लिए बेटी को बताई तो ये कोई भी बेटी ऐसा अंगीकार नहीं करेंगे, ऐसे वृद्धाप्य शरीर को देख के डर जाता, पीछे जाएंगे, शादी नहीं करेंगे उसको. फिर भी शादी किया क्यों, उसका पातिवृक्ष का लक्षण है उनका बारे में, सुकन्या को पातिवृक्ष का लक्षण का बारे में बहुत अच्छा था. उसको मर्यादा से पिताजी का जो कुछ आज्ञा है वो पालन किया, पालन करके संसार जीवित किया था. इसके लिए ये संक्षिप्त में इस श्लोक का बारे में ये वर्णन किया है. हरे कृष्णा. क्षमा कर दिए, कुछ मेरा से गलत हो गया था ब्रह्मचारी के बारे में थोड़ा. बोल, हमारे हरिबंधु प्रभु भी कल बताया ना, एक एग्जाम्पल बताया. सो मैं सोचा क्या बताने के बाद में वो दोनों ठीक तरह से कवर किया, मेरे को कवर करने के लिए क्या है, फिर भी मेरे तो ट्राई किया थोड़ा कवर करने के लिए. श्रीमद